आज हम चीन की राज्य क्रांति पर चर्चा करेंगे। चीन की राज्य क्रांति 1911 में हुई थी। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला प्रमुख कारण, आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशांति थी। वहां की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। 1885 में चीन की कुल आबादी 37 करोड़ 70 लाख थी। 1911 में वह बढ़कर 43 करोड़ हो गई थी। 25 साल के समय में चीन में 6 करोड़ मनुष्यों की वृद्धि हो गई थी। इतने मनुष्य के लिए खाद्य सामग्री को जुटा सकना तभी संभव था जबकि पैदावार में भी इसी अनुपात से वृद्धि हो। पर चीन में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज उत्पन्न करने का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। बढ़ती हुई आबादी को अपना निर्वाह कर सकना कठिन प्रतीत होता था। साथ ही वर्षा और बाढ़ों की प्रचुरता के कारण चीन में खेती को नुकसान भी पहुँचा करता था। 1910-11 में चीन की अनेक नदियों में भयंकर बाढ़ें आई। इससे न केवल खेती नष्ट हुई अपितु हजारों गांव भी बह गए। लाखों लोग बेघर हो गए। उनकी आजीविका का कोई भी साधन नहीं रह गया। अनुमान किया गया कि 1910 और 11 की बाढ़ों के कारण 30 लाख के लगभग मनुष्यों ने भूख के कारण तड़प तड़प कर जान दी थी। जब आर्थिक दृष्टि से जनता इतनी दुर्दशा हो तो यह स्वाभाविक है उसमें विद्रोह की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगे। जनसंख्या की वृद्धि और सरकार की निर्बलता के कारण इस समय चीन में प्रायः हर साल ही अकाल पड़ते रहते थे और बहुत से लोगों को पर्याप्त अन्न न मिलने के कारण मृत्यु का शिकार बनना पड़ता था। इससे उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति प्रबल होती जाती थी। 1910-11 की बाढ़ों और दुर्भिक्ष ने इस प्रवृत्ति को और भी अधिक उग्र बना दिया था। दूसरा प्रमुख कारण इस प्रकार है, अपने देश की आर्थिक दुर्दशा से परेशान होकर बहुत से चीनी लोगों ने इस समय आजीविका की तलाश में विदेशों में जाकर बसना आरंभ कर दिया था। शुरू में चीनी लोग अमेरिका में जाया करते थे पर 1890 में वहां की सरकार ने चीनी लोगों के खिलाफ अनेक कानून स्वीकृत किए और उनके लिए अमेरिका में जाकर बसना आसान नहीं रह गया। पर फिर भी 1911 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे हुए चीनी लोगों की संख्या 3 लाख के लगभग हो गई थी। अमेरिका में बस सकने का मार्ग जब चीनी लोगों के लिए बंद हो गया तो उन्होंने हवाई द्वीप, फिलीपीन, मलाया आदि में जाकर बसना शुरू किया। हवाई और फिलीपीन में भी उनके खिलाफ कानून स्वीकृत किए गए। मलाया में चीनी लोग इतनी अधिक संख्या में आजीविका की तलाश में गए कि 1911 में वहाँ उनकी जनसंख्या 13,02,000 तक पहुँच गई। दक्षिण अमेरिका के विविध प्रदेशों में भी चीनी लोग कुली का पेशा करने के लिए जाने लगे और प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा के अनुसार लाखों चीनियों को वहाँ कुली या गुलाम के रूप में कार्य करने के लिए ले जाया गया। इतनी बड़ी संख्या में चीनियों का विदेशों में बसना इस बात को भली भांति सूचित करता है कि इस समय चीनी लोगों की आर्थिक दृष्टि से कितनी दुर्दशा थी। पर चीनियों के इस प्रकार विदेश जाने का एक परिणाम यह भी हुआ कि विदेशों में निवास करने वाले चीनी लोगों को नए विचारों के संपर्क में आने का अवसर मिला और यह बात चीन में क्रांति की भावना को विकसित करने में काफी सहायक सिद्ध हुई। तीसरी कारण इस प्रकार है, क्रांतिकारी दल चीन में पहले से विद्यमान था। पाश्चात्य देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो लोग अपने देश को वापस आ रहे थे वे यूरोप के ज्ञान विज्ञान के साथ साथ वहाँ की क्रांतिकारी भावनाओं को भी अपने साथ ला रहे थे। डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में जिस क्रांतिकारी दल का संगठन चीन में हुआ था उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 1898 में इन क्रांतिकारी लोगों को चीन छोड़कर बाहर भागना पड़ा और डॉक्टर सन्यात सेन ने जापान में जाकर आश्रय लिया। टोक्यो रहते हुए इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता ने अपने दल का पुनः संगठन किया और तुंगमेंग हुई नाम से एक नए क्रांतिकारी दल का निर्माण किया। इस दल के लोगों का मुख्य उद्देश्य था मांचू राजवंश का अंत कर रिपब्लिक की स्थापना करना। शुरू में इस दल में वे चीनी लोग सम्मिलित हुए जो विदेशों में बसे हुए थे। धीरे धीरे चीन में भी इसकी शाखाएं स्थापित हुई। सेना के सिपाहियों में भी यह दल अपना कार्य कर चुका था और इसके प्रयत्नों से 1906, 1907 और 1910 में अनेक स्थानों पर विद्रोह भी हुए थे। चौथा कारण इस प्रकार है, 1905 में चीन की प्राचीन परीक्षा पद्धति का अंत कर दिया गया था। अब सरकारी पदों पर नियुक्ति करते हुए प्राचीन ग्रंथों में निपुणता की अपेक्षा आधुनिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। चीन में अभी ऐसे उच्च शिक्षणालय पर्याप्त संख्या में स्थापित नहीं हुए थे जिनमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की सुविधा हो। इसलिए 1905 के बाद बहुत अधिक चीनी विद्यार्थियों ने यूरोप और अमेरिका जाना शुरू किया। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए इतनी दूर जा सकने में असमर्थ थे वे अपने पड़ोसी जापान के कॉलेजों में प्रविष्ट होने लगे। इस समय तक जापान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पश्चात देशों के समकक्ष हो गया था। 1905 के बाद इतने अधिक चीनी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जापान गए कि वहां उनके लिए प्रवेश पा सकना कठिन हो गया। परिणाम यह हुआ बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज जापान में स्थापित हुए जिनका उद्देश्य चीनी विद्यार्थियों को भर्ती कर रुपया कमाना था। यद्यपि इनमें अध्यापन का समुचित प्रबंध नहीं था पर इनमें पढ़ने वाले चीनी विद्यार्थी जहां नए ज्ञान विज्ञान का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त कर लेते थे वहां साथ ही उन्हें क्रांतिकारी चीनी दल के संपर्क में आने का स्वर्णिम अवसर मिल जाता था। 1998 में जो चीनी क्रांतिकारी नेता जापान में आश्रय ग्रहण किए हुए थे वे चीनी विद्यार्थियों में बड़े उत्साह से अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे। पांचवा कारण इस प्रकार है। छापे खाने का आविष्कार सबसे पूर्व चीन में ही हुआ था पर चीन के ये पुराने प्रेस पहले केवल प्राचीन पुस्तकों के मुद्रण का ही कार्य करते थे। 19वीं सदी के अंत भाग में समाचार पत्रों का प्रकाशन भी वहां शुरू हो गया था। ये समाचार पत्र जनता में नई भावनाओं को विकसित करने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। आइए अब हम छठे कारण की चर्चा करें। 1911-12 की राजक्रांति के प्रादुर्भाव में जहां ये सब आधारभूत कारण थे वहां एक सामयिक समस्या ऐसी भी उत्पन्न हो गई थी जिसने पेकिंग की केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रांतीय शासकों में विरुद्ध भावना को विकसित कर दिया था। इस समय चीन में रेलवे लाइनों का बड़ी तेजी के साथ निर्माण हो रहा था। पेकिंग सरकार से अनुमति लेकर अनेक विदेशी राज्य चीन के विविध प्रदेशों में रेलवे का निर्माण करने में तत्पर थे। इस दशा में चीन के अनेक प्रांतों के सूबेदारों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना वे अपने प्रदेशों में स्वयं रेलवे का निर्माण करें और इसके लिए आवश्यक पूंजी अपने प्रांत की राजकीय आमदनी द्वारा प्राप्त कर ले। पर इस संबंध में पेकिंग की केंद्रीय सरकार की नीति यह थी कि रेलवे लाइनों का निर्माण केंद्रीय शासन के नियंत्रण में ही रहे। पेकिंग सरकार के पास पूंजी का अभाव था पर वह विदेशी राज्यों से कर्ज लेकर उसे प्राप्त कर सकती थी। विदेशी लोग चीन में जिस प्रकार अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक थे उसके कारण पेकिंग सरकार को पूंजी का प्रबंध करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था। पर अनेक प्रांतीय सूबेदार चीन में विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व को चिंता की दृष्टि से देख रहे थे और वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके अपने प्रदेशों में रेलवे निर्माण का कार्य उन्हें सौंप दिया जाए। इस विषय में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में मतभेद बहुत बढ़ गया और यही कारण है कि 1911 की राजक्रांति के समय अनेक प्रांतों में क्रांतिकारियों का साथ दिया। 1911 में परिवहन के विभाग का प्रधान अधिकारी शेंग हुई सुअन हुआई को नियत किया गया। यह रेलवे लाइनों को केंद्रीय सरकार के प्रभुत्व में रखने का प्रबल पक्षपाती था और इसने रेलवे विस्तार के लिए पूंजी प्राप्त करने के निमित्त विदेशों से कर्ज लेने की योजना को क्रिया के रूप में परिणित किया। ब्रिटेन आदि विदेशी राज्यों से भारी रकम कर्ज ली गई। प्रांतों में इससे बहुत अधिक असंतोष हुआ और अनेक स्थानों पर विद्रोह की भावना प्रबल हो गई। आइए राज्य क्रांति की सातवीं प्रमुख कारण पर चर्चा करें। जिस समय पेकिंग सरकार की नीति के विरुद्ध अनेक स्थानों पर विद्रोह शुरू हो रहे थे 10 अक्टूबर 1911 को हैंको में एक बम फूट गया। अनुसंधान के बाद मालूम हुआ कि जिस मकान में बम फूटा था वहां चीन के क्रांतिकारी दल का अड्डा था और वहां बम आदि अस्त्र बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते थे। पुलिस ने हैंको के क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया। उनमें से बहुतों को प्राणदंड दिया गया। इस प्रदेश की सेना के भी अनेक अफसर और सैनिक क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने के संदेह में गिरफ्तार किए गए। इससे सेना में बहुत असंतोष हुआ। अन्य सैनिकों को यह संदेह हो गया कि कहीं उन्हें भी क्रांतिकारी दल से सहानुभूति रखने के कारण गिरफ्तार ना कर लिया जाए। परिणाम यह हुआ कि यांगत्से नदी के पार वुचांग प्रदेश की सेना ने विद्रोह कर दिया। अपने सेनानायक कर्नल ली युआन हुंग को विद्रोही सैनिकों ने इस बात के लिए विवश किया कि वह उनका नेतृत्व करे। आगे चलकर यह ली युआन हुंग क्रांतिकारी दल का चीन के क्रांतिकारी दल का एक प्रधान नेता बन गया और अंत में चीनी रिपब्लिक के राष्ट्रपति के पद पर भी प्रतिष्ठित अधिष्ठित हुआ। अब चीन में राज्य क्रांति आरंभ हो गई थी। आइए चीन में राज्य क्रांति के प्रमुख कारणों के बाद राज्य क्रांति की प्रगति के बारे में चर्चा करें। वुचांग की सेना ने 1911 के अंतिम सप्ताहों में जो विद्रोह आरंभ किए थे वह शीघ्र ही यांगत्से और उसके दक्षिणवर्ती प्रदेशों में फैल गए। सांतुंग और चिहली के प्रांतों की सेनाओं ने भी पेकिंग सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उत्तरी चीन की सेनाएं मंचू सरकार के प्रति अनुरक्त रहीं और विद्रोह में शामिल नहीं हुई। इन सेनाओं का संगठन युआन शिकाई द्वारा किया गया था और ये आधुनिक ढंग से संगठित थी। यांगत्से के दक्षिणी प्रदेश क्रांतिकारियों के साथ थे और उत्तरी चीन में मंचू शासन सुव्यवस्थित रूप से स्थापित था। विद्रोही प्रदेशों में एक सुसंगठित क्रांतिकारी सरकार की स्थापना का उद्योग किया गया। इस बीच में क्रांति की ज्वालाएं शंघाई तक पहुंच गई और वहां एक स्वतंत्र रिपब्लिक सरकार का संगठन किया गया। इस सरकार में विदेश मंत्री का पद श्री वू तिंग फांग ने ग्रहण किया। ये पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी राजदूत के पद पर रह चुके थे और पाश्चात्य राज्यों की शासन पद्धति से भली भांति परिचित थे। इन्होंने एक उद्घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमें क्रांतिकारी सरकार के उद्देश्यों कार्यक्रम को भली भांति निरूपण करके विदेशी राज्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे पेकिंग सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता न करें और चीन के इस अंदरूनी प्रश्न पर सर्वथा उदासीन नीति का अनुसरण करें। इस उद्घोषणा पत्र से यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि यदि इस समय विदेशी राज्यों ने पेकिंग सरकार की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से उन्हें कोई ऋण दिया तो चीन की रिपब्लिक सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी। जब चीन के विविध प्रांतों में विद्रोह की अग्नि भड़क रही थी, पेकिंग की राष्ट्रीय महासभा शासन में सुधार के लिए नई नई मांगें पेश करने में तत्पर थी। 22 अक्टूबर 1911 को राष्ट्रीय महासभा का नया अधिवेशन शुरू हुआ। इसने मांग की कि सेंग हू शुअन हुआई को अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाए। परिवहन विभाग के प्रधान अधिकारी की स्थिति में इन सज्जन ने विदेशी पूंजी को प्राप्त कर केंद्रीय सरकार की ओर से रेलवे विस्तार की जिस नीति का अनुसरण किया था उससे चीन के विविध प्रांतों में घोर असंतोष विद्यमान था। सेंग हू शुअन हुआई को अपने पद से पृथक कर दिया गया। निसंदेह यह लोकमत की भारी विजय थी। अब राष्ट्रीय महासभा ने मांग की कि चीन में मंत्रिमंडल का बकायदा संगठन होना चाहिए और मंत्रिमंडल के निर्माण का कार्य किसी ऐसे सुयोग नेता को सौंपा जाए जिस पर जनता को विश्वास हो। राज परिवार का कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहिए और शीघ्र ही चीन के लिए नए शासन विधान का निर्माण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महासभा की एक मांग यह भी थी कि जिन लोगों को किसी राजनीतिक अपराध के कारण गिरफ्तार किया गया है व जिन्हें देश से बहिष्कृत किया गया है उन सबको क्षमा प्रदान कर दी जाए। पेकिंग की मंचू सरकार राष्ट्रीय महासभा की इन सब मांगों को स्वीकृत करने के लिए विवश हुई। सेना में सर्वत्र जिस प्रकार विद्रोह हो रहे थे उसकी उपेक्षा कर सकना अब संभव नहीं रह गया था। नवंबर 1911 के शुरू में मंचू सम्राट की ओर से इन सब मांगों को स्वीकार कर लिया गया, पर चीन के विविध प्रांतों में क्रांतिकारी लोगों के जो विद्रोह गंभीर रूप धारण कर रहे थे उनको अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। इस समय चीन की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि शासन सूत्र का संचालन किसी ऐसे सुयोग व शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाए जो अव्यवस्था और विद्रोह का दमन कर शांति स्थापित करने में समर्थ हो। अब यह कार्य युआन शिकाई को सौंपा गया। उससे यह प्रार्थना की गई कि वह पेकिंग सरकार के संचालन का कार्य अपने हाथों में ले ले। 8 नवंबर 1911 को राष्ट्रीय महासभा ने युआन शिकाई को प्रधानमंत्री निर्वाचित किया और स्थल एवं जल सेना के प्रधान सेनापति का कार्य भी सौंप दिया गया। वैध राजसत्ता की स्थापना का उद्योग। युआन शिकाई मंचू राजवंश की सत्ता का पक्षधर था। समय की गति को देखकर उसने निश्चय किया कि चीन में वैध राजसत्ता की स्थापना द्वारा ही मंचू राजवंश की सत्ता को कायम रखा जा सकता है। पर मांचू राजवंश को इस बात के लिए तैयार करना सुगम नहीं था कि वह अपनी शक्ति और अधिकारों का परित्याग कर उस स्थिति को स्वीकार कर ले जो इंग्लैंड के राजा की थी। अतः युवान सिकाई ने अनुभव किया कि विद्रोहियों को अपने प्रयत्न में सफल होने देना ही देश के लिए हितकर है। यदि क्रांतिकारी लोग निरंतर प्रबल होते जाएंगे तभी मांचू राजवंश के लोग यह समझ सकेंगे कि उन्हें भी समय के साथ साथ बदलना चाहिए और चीन में वैध राजसत्ता की स्थापना की जानी चाहिए। पर साथ ही युवान सिकाई यह भी अनुभव करता था कि यदि क्रांतिकारी लोग अधिक प्रबल हो जाएंगे तो उनको मांचू राजवंश की सत्ता के स्वीकृत करने के लिए मनवाना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार युवान सिकाई एक कुशल राजनीतिक के रूप में इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि न क्रांतिकारी लोग अधिक प्रबल होने पाएं और न मांचू राजवंश ही अनुभव कर सके कि उसकी शक्ति बहुत प्रबल है। उसकी सेनाओं ने अनेक स्थानों पर क्रांतिकारी सेनाओं का डटकर मुकाबला किया और क्रांतिकारी नेताओं को इस बात के लिए विवश किया कि वे उसके साथ समझौता करने का उद्योग करें। आइए अब हम चीन में रिपब्लिक की स्थापना पर चर्चा करें। प्रथम समसामयिक रिपब्लिकन सरकार की स्थापना। युवान सिकाई की इस नीति के कारण जहां पेकिंग की सरकार एक ओर क्रांतिकारियों के विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग कर रही थी, वहां साथ ही वह कर्नल ली युआन हुंग के साथ समझौते की बातचीत में भी तत्पर थी। ली युआन हुंग संधि की बातचीत के लिए तैयार था, पर शंघाई में स्थित क्रांतिकारी सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते की बातचीत उसी के साथ की जाए। कर्नल ली युआन हुंग ने इस बात को स्वीकार किया कि क्रांतिकारी लोगों से सुलह करने के लिए शंघाई की सरकार से बातचीत करना ही अधिक उपयुक्त है। युवान सिकाई ने अपनी ओर से तांग साओ ई को समझौते की शर्तें तय करने के लिए नियत किया। शंघाई की सरकार की ओर से डॉक्टर वू तिंग फांग को अपना प्रतिनिधि बनाया गया। ये दोनों सज्जन कैंटन के निवासी थे और इन दोनों की उच्च शिक्षा अमेरिका में हुई थी। जिस समय पेकिंग की मांचू सरकार और शंघाई की क्रांतिकारी सरकार आपस में समझौते की बातचीत कर रही थी, विविध क्रांतिकारी नेताओं ने यह निश्चय किया कि वे परस्पर मिलकर रिपब्लिकन सरकार का बाकायदा संगठन कर ले। कर्नल ली युआन हुंग की प्रेरणा से विविध क्रांतिकारी नेता नानकिंग में एकत्र हुए। इन नेताओं का चुनाव या तो क्रांतिकारी सेनाओं द्वारा किया गया था या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। चीन के जिन प्रांतों ने पेकिंग की केंद्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके क्रांतिकारियों का साथ दिया था, उनकी प्रांतीय विधानसभाएं पूर्ण उत्साह से क्रांतिकारी रिपब्लिकन सरकार की स्थापना में सहयोग दे रही थी। नानकिंग में जिस सामयिक रिपब्लिकन सरकार का संगठन हुआ उसमें राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर सन यात सेन को निर्वाचित किया गया। 1998 में डॉक्टर सन यात सेन चीन छोड़कर जापान चले जाने को विवश हुए थे और इस समय अमेरिका में निवास करते हुए वहां के प्रवासी चीनी लोगों में क्रांति की भावना को विकसित करने में तत्पर थे। 1911 की क्रांति को उन्होंने अपने स्वप्नों को चरितार्थ कर सकने का उपयुक्त अवसर समझा और वे चीन वापस लौट आए। 29 दिसंबर 1911 के दिन जिन्हें सामयिक रूप से चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और 1 जनवरी 1912 को उन्होंने अपने पद के कार्यभार को संभाल लिया। नानकिंग की इस सामयिक रिपब्लिकन सरकार के संगठित हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की शक्ति बहुत बढ़ गई। इस क्रांतिकारी सरकार में नवजीवन और शक्ति थी। इसके विपरीत मांचू सरकार की दशा अत्यंत विकृत और निर्बल थी। आइए अब हम समझौते की बातचीत के बारे में चर्चा करें। डॉक्टर वू तिंग फांग और तांग साओ ई में समझौते की जो बातचीत चल रही थी वह तभी सफल हो सकती थी जबकि पहले यह फैसला हो जाए कि चीन में शासन व्यवस्था किस प्रकार की हो। इसके लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया कि शासन के प्रकार का निर्णय करने का कार्य एक संविधान परिषद को सौंप दिया जाए जिसके सदस्य जनता के वोटों के द्वारा निर्वाचित हो, पर लोकमत द्वारा संविधान परिषद के निर्माण के प्रश्न पर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। क्रांतिकारी सरकार के प्रतिनिधि डॉक्टर वू तिंग फांग ने इस बात का जोर दिया कि मांचू राजवंश के नेतृत्व में चीनी राष्ट्र को उन्नत कर सकना असंभव है। मंचू दरबार इतना अधिक विकृत हो चुका है कि जिसमें नवजीवन का संचार करना अब सुगम बात नहीं है। श्री तांग साओ यी ने भी इस बात को स्वीकार किया। दोनों ही पक्ष इस समय समझौते के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से किसी एक के पास भी युद्ध को जारी रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। विदेशी राज्यों ने परस्पर मिलकर यह फैसला किया कि वे किसी भी पक्ष की आर्थिक सहायता नहीं करेंगे। मंचू सरकार का खजाना खाली हो चुका था और युवान शिकाई ने मंचू सम्राट के घरेलू कोष से भी धन प्राप्त करने में संकोच नहीं किया था। नानकिंग की रिपब्लिकन सरकार के पास जो कुछ भी धन था वह या तो जनता से चंदा एकत्र करके या प्रांतों की राजकीय आमदनी द्वारा प्राप्त किया गया था। यह धन इतना नहीं था कि युद्ध को देर तक चलाया जा सके। इस अवस्था में दोनों पक्षों ने इसी बात में अपना हित समझा कि युद्ध को बंद कर आपस में सुलह कर ली जाए। आइए अब हम समझौते की शर्तों पर चर्चा करें। 12 फरवरी 1912 को युवान शिकाई और डॉक्टर सन्यात सेन की सरकारों ने परस्पर समझौता कर लिया। इस समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त, मांचू राजवंश का अंत कर दिया जाए। सम्राट हु शुआनतुंग, जिसकी आयु केवल 6 साल की थी, जीवन पर्यंत सम्राट की पदवी का प्रयोग कर सके, राजप्रसाद पर उसका कब्जा रहे और जीवन भर उसे एक अच्छी बड़ी धनराशि वार्षिक रूप से राजकोष से प्राप्त होती रहे। मांचू राजकुल की जो समाधियां हैं उनकी रक्षा का भार भी राज्य पर रहे। दूसरी शर्त थी, मांचू राजवंश की सत्ता की समाप्ति पर चीन में नई सरकार की स्थापना का कार्य युवान शिकाई को सौंप दिया जाए। चीन के लोगों ने इस समझौते को स्वीकार कर बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य किया। मांचू राजवंश ने स्वयं अपने राज सिंहासन के परित्याग की बात स्वीकार कर अपने गौरव और प्रतिष्ठा को कायम रखा। यदि मांचू लोग समय की लहर के विरुद्ध क्रांति की प्रवृत्तियों का मुकाबला करने का प्रयत्न करते तो उनकी भी वही गति होती जो कि फ्रांस के बुर्बो राजवंश की हुई थी। सम्राट की ओर से ही एक घोषणा 12 फरवरी 1912 के दिन प्रकाशित की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युवान शिकाई को हम यह अधिकार देते हैं कि वह सामयिक रिपब्लिकन सरकार का संगठन करें और देश में एकता की स्थापना के लिए रिपब्लिक की सेना का सहयोग प्राप्त करें। यही एक ढंग है जिससे फिर से जनता में शांति और साम्राज्य में व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। जिस प्रकार अब तक मंचू चीनी मंगोल मुस्लिम और तिब्बती लोग एक साम्राज्य में शांति के साथ रहते रहे हैं, वैसे ही भविष्य में भी वे परस्पर मिलकर एक विशाल चीनी रिपब्लिक में निवास करें। डॉक्टर सन्यात सेन ने शुरू में सम्राट की इस घोषणा का विरोध किया। उनका कहना था कि सम्राट की आज्ञा द्वारा जो रिपब्लिक स्थापित होगी वह जनता को किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी, पर युवान शिकाई ने उसे विश्वास दिलाया कि इस घोषणा द्वारा उसे जो विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं उनका वह दुरुपयोग नहीं करेगा और वह चीन में जनता द्वारा रिपब्लिक की स्थापना में पूर्ण रूप से सहयोग देगा। युवान शिकाई के साथ समझौता करने के लिए डॉक्टर सन्यात सेन ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और नानकिंग में एकत्र क्रांतिकारी नेताओं ने युवान शिकाई को सामयिक चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया। इस प्रकार पेकिंग और नानकिंग की सरकारों में परस्पर समझौता हुआ, पर यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्रांतिकारी नेता युवान शिकाई को दिल से नहीं चाहते थे। उनका विचार था कि वह वस्तुतः रिपब्लिकन शासन का पक्षपाती नहीं है, पर युवान शिकाई से समझौता करने का केवल यही एक उपाय था कि उसे चीन की रिपब्लिक का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाए, अन्यथा वह उत्तरी चीन की सैन्य शक्ति का उपयोग कर क्रांतिकारी लोगों से युद्ध को जारी रखने के लिए तैयार था। साथ ही नानकिंग की रिपब्लिकन सरकार के पास धन की शक्ति का सर्वथा अभाव था और उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह उत्तरी सेनाओं की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रख सके। इस प्रकार चीन से मंचू राजवंश के शासन का अंत हुआ। 17वीं सदी के मध्य भाग में मंचू विजेताओं ने जिस शासन का चीन में आरंभ किया था अब उसकी समाप्ति हो गई। और चीन में रिपब्लिकन सरकार की स्थापना हुई। एशिया के विशाल महाद्वीप में यह पहली रिपब्लिक थी जो 20वीं सदी के शुरू में चीन में स्थापित हुई थी। जापान ने अपना उत्कर्ष करते हुए राजसत्ता को कायम रखा था, इसी कारण उसके शासन विधान का विकास प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन आदि उन देशों के ढंग पर हुआ जिनमें राजा की सत्ता को कायम रखा गया था। पर चीन ने क्रांतिकारी फ्रांस का अनुसरण किया और राजसत्ता का सदा के लिए अंत कर लोकतंत्र रिपब्लिक की स्थापना की। निस्संदेह न केवल चीन अपितु संपूर्ण एशिया के इतिहास में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। विविध विदेशी राज्यों ने युआन शिकाई के नेतृत्व में स्थापित रिपब्लिकन सरकार को स्वीकृत कर लिया और चीन की राज्य क्रांति सफल हुई। इस प्रकार चीन की राज्य क्रांति जो 1911 में शुरू हुई थी एक सफल समाप्ति की ओर बढ़ी।